अगली सूरत लुकमान है। आप कह लीजिए कि सूरत लुकमान क्या है? एक पैकेज है। किसका? पेरेंटिंग का और अल्लाह से मोहब्बत का। शुरू के पहले हिस्से में कुछ ऐसी खराबियां हैं जो पेरेंटिंग की कमी बेशी में या वक्त पे तरबियत ना शुरू करने के नतीजे में सामने आती हैं। और दूसरे रुकू में लुकमान जो एक नेक शख्स थे उनकी कुछ खूबसूरत किस्म की नसीहतें सामने रखकर अल्लाह ताला ने हमें आज सिखा दिया कि तुम्हें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। आइए इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन। ये किताब हकीम की आयात है, नोट करें। ये किताब आपको हिकमतें सिखाती है क्योंकि ये किताब खुद हिकमतों से भरी हुई है और अल हकीम की तरफ से आई है। और क्या खूबी है इस किताब की? हिदायत, गाइड बुक और रहमा, रहमत है। किसके लिए? मुहसिनीन के लिए। तो मुहसिन की क्या तारीफ पढ़ी थी हमने सूरत अनकबूत में? मुहसिन वो है कि जो अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करके एहसान न जतलाए, अल्लाह के काम करके उसको ऑनर समझे, अल्लाह के बंदों को खैर देने की नियत कर ले। हम दुआ करते अल्लाह में मुहसिन बनाए। अगली आयत में मुहसिन की डिस्क्रिप्शन, कौन है मुहसिन, हाईलाइट कीजिएगा। पहले खुद से पूछिए, क्या मैं मुहसिना बनना चाहती हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगाज कहाँ से होगा? अल्लज़ीना युकीमूना सला, जो लोग नमाज कायम करते हैं। चेक करते हैं अपनी नमाजों को, मेरी नमाजें पूरी हैं, मेरे नमाजों की कैफियत क्या है? अब तो सूरत मोमिनून में खास ही उनकी बात भी पढ़ ली, यो हाफिजून की भी बात पढ़ ली, तो नमाज की हिफाजत दीन की हिफाजत है। जिस तरह रमजान में नमाजों की हिफाजत है, इसी तरह गैर रमजान में भी इंशाल्लाह नमाजें नहीं छोड़नी। और नमाज हमें ट्रैक पे रखती है, याद रखिए। ये सीधी होगी, बाकी सीधा होगा। पांच वक्त अल्लाह से गुफ्तगू कर लेंगे समझ कर, तो मैं आप सबको दावत दूंगी कि नमाज का तर्जमा सीखें। एक दफा जरूर देखें कि हम इस नमाजों में अल्लाह से क्या बातें करते हैं। और या का ना बुद्वा या का नस्तीन समझ आ गया, बाकी चीजें खुद बखुद समझ आ जाएंगी। दूसरी चीज, वो जकात देते हैं, ज़कात पे भी हमने गौर कर लिया पीछे। तो तीसरी चीज, वहुम बिल आखिरतिहुम यूकिनून, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाना। मुकम्मल कामयाबी सिर्फ मुहसिनों लेगी। और मुहसिन कौन है? अल्लाह के नकत राहू की कैफियत है, गोया करे के मामले में मुहसिन को देने वाला बने की बजाय अल्लाह ताला हमें मुहसिन बना दे। लेकिन कुछ लोग मुहसिन नहीं होते बल्कि वो मुजरिम होते हैं। क्या करते हैं? हाईलाइट कीजिएगा। वमिन नासी मै यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्मिन। और इंसानों में कोई ऐसा भी है जो कलाम दिल फरेब खरीद कर लाता है। ये लहुल हदीस के मकसद से गाफिल कर देने वाली सरगर्मियां, कोई कॉल, कोई फेल, कोई बात, वो खेल भी है, वो तमाशा भी है, वो फिल्म भी है, वो ड्रामा भी है और वो गाना भी है, कि जिससे इंसान जिंदगी के मकसद से गाफिल हो और उम्मत मुस्लिमा के बनने के मकसद से गाफिल हो जाए। नजर बिन हास्ता, जब उसने देखा कि सच्चे मुसलमान नफसला पीछे नहीं हट रहे अल्लाह के नबी से, हमसे शौक बढ़ता ही जा रहा है, मुल्क शाम गाने वाली लोड़ियां खरीद, यानी आप कह लीजिए कि जो सिंगर्स थी, और ला के उनको उन रास्तों पर बिठा दिया जहां से लोग नमाजों के लिए जाते और सहाबा गुजरते, और उनको कहता खा, जिस किसी को देखता कि वो इस्लाम से मुतासिर है, नबी सल्लम की दावत से इम्प्रेस हो रहा है, कुरान की तरफ आ रहा है, तो अपनी एक लौंडी को मुसल्लत करता, कहता जा इसको खूब खिला पिला और इसको महव कर दे। अल्लाह ने उसकी बात कर दी। कल तो एक नजर बिन हारस था, आज तो लाखों करोड़ों होंगे एल्बम्स के, जिन्होंने आज हमारी यूथ को, और यूथ तो छोड़िए, बूढ़े होने पर भी ये शौक नहीं जाते, तब भी वो कहते हैं नहीं, फिल्मों और ड्रामों से हिदायत मिलती है। और कई बूढ़े हैं जो जिंदगी के आखिरी दिनों में बैठे हैं, जब तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह और नेकियों में कोशिश करने की उम्र होती है, उस वक्त भी वो घंटों स्क्रीनों के आगे बैठकर अपनी जिंदगी को आग लगा रहे हैं। कल मौत आएगी तो क्या सोचेंगे? और वो उससे भी बड़े जालिम है कि जब वो बेचारे बीमार होकर हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं तो उनके बेड के ऊपर स्क्रीन पर उनको ऐसी एंटरटेनमेंट दिखाते हैं कि इस बीमारी में भी अल्लाह का जिक्र ना आए। तो याद रखिए, मिसाली घरों से गिना की नहीं कुरान की आवाजें आती हैं, गिना गाने को कहते हैं। और गिना और जिना का इलाज नमाज और कुरान है। 21वें पारे के शुरू में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर उसी की बात आ गई। तो दुआ कीजिए कि हमारे घरों से कुरान की आवाज़ें उठें और हमारी नस्लों के कानों में कुरान पढ़े। आज अपने दिल से नियत करके देख लें, जब तक आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, कुरान की मोहब्बत नहीं आएगी। एक रिवायत का खुलासा है, दो आवाज़ें जो मबगूज हैं अल्लाह को गज़ब आता है, गुस्सा आता है, बुग़्ज़ आता है कह लें, खुशी के वक्त गिना और गम के वक्त नौहा। और आज कहते हैं म्यूजिक के बगैर शादी हो जाए, अल्लाह को गजब और बुग़्ज़ हो रहा है, अल्लाह फील एनिमिटी। पता नहीं अल्लाह कितना सबर करता है ऐसे मौकों पे, जब हम महफिल मौसीकियां और इस तरह के राग रंग और इस तरह के कॉन्सर्ट अपने बच्चों के वलीमों पे पेश करते हैं। भाई वलीमे की जरूरत क्या थी, ना करें, नहीं वो तो सुन्नत है। तो जिस चीज से अल्लाह को गुस्सा आ रहा है, और फिर जब साथ ना बैठे और जब सारी मिक्स गैदरिंग ना हो, चाहे वो महफिल गजल है या राग रंग है या कुछ भी है, ये मुसलमानों को सोचना है। ताउस और रबाब आखिर, अल्लामा इकबाल आज से 200 साल पहले कह गए कि उम्मतों का क्या, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, उम्मतों की तकदीर क्या होती है, मैं तुझको बताता हूँ। ताउस और रबाब आखिर, ताउस और रबाब कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, कि मुसलमानों की नस्लों के हाथों में गिटार नहीं होते, ताउस नहीं है, रबाब नहीं है, उनके तो कुछ और है, उनकी जिंदगी का तो मकसद एक बहुत बड़ा था। आज हम अपने मुल्क का दिफा करते हैं तो गिटार पे गाने गा गा के करता दिखाते हैं, कौमी नगमे मिली नगमे नाचते हैं फुदकते हैं गलियों में सड़कों पे किनारों पे, और हम कहते हैं हम बड़ी खिदमत करें उम्मत मुस्लिमा की। इन चीज़ों ने कुरान की आवाज़ को हल्का कर दिया, और कुरान की आवाज़ की आदत डाल लें एक बार अपने मन पे काबू पाकर, आपको कभी म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा। और ख़ास तौर पर वो फिर जिसके अंदर फिक्शन और गंदी शायरी भी है, अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इससे बचा के रख दे। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को बता दो कि एक दर्दनाक अजाब है, अलबत्ता जो लोग ईमान ले और नेक अमल करें इनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये अल्लाह का पुख्ता वादा है, और अल्लाह ताला जबरदस्त भी है और हकीम भी है। फिर अल्लाह अपनी कायनात पे गौर करवाते हैं, खलक समावाती बगैर मदिन तरउनहा, और इसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, इसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक न जाएं, इसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी, ये तो है अल्लाह की तख्लीक। अब जरा तुम मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह कि ये जालिम सरी गुमराही में पड़े हुए, कल के तो बुत थे और उन्होंने तो कुछ नहीं पैदा किया था। अगर आज आप साइंस और दुनियावी तरक्की को भी ले लीजिए, एक तरफ कायनात में अल्लाह की निशानियां और एक तरफ मॉडर्न दौर की तरक्की, दोनों का तकाबुल है कोई? आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, शेंगलेट लगा लेते हैं, आप उसके अंदर चूना और पेंट और रंग भरंग लगा ले, उसके तकाबुल में जरा आसमान को देखिए, पानी को देखिए, कायनात की जिस चीज को आप गौर से देखेंगे आपको उसमें मोहब्बत दिखेगी। अल्लाह का कमाल भी और जमाल भी है, तो उस अल्लाह से मोहब्बत करने की जरूरत है। बागे लुकमान की नसीहत है, इसको भी हम इकट्ठा पढ़ के कोशिश करेंगे कि इसमें से अपने लिए अमल की बातें लें, कि औलाद के साथ किस उम्र में कब क्या बात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंटिंग ए टू जी में इसी टॉपिक पर, इन्हीं आयतों को लेकर डिटेल से एक टॉपिक मौजूद है, यूथ से कैसे डील करें, गुस्से वाले बच्चों से कैसे डील करें, छोटी उम्र में कैसे करें, किस उम्र में किस बच्चे को लेना है, फिर उनकी डिफरेंट मैनेजमेंट है, पनिश मैनेजमेंट क्या है, फिर गिफ्ट देने कैसे है, तारीफ कैसी है, तनकीद के। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर सुनिए पेरेंटिंग ए टू जी, खास तौर पे वो औरतें या लड़कियां जो माएं हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीजें बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमने एक उम्मत प्रोड्यूस करनी है, और उम्मत प्रोड्यूस कब करेंगे अच्छी, जब तरीकाकार ठीक होगा। किसी भी मुल्क की कौम और नस्लें वहां का प्रोडक्ट होती हैं। आप कह लें कि शादी एक फैक्ट्री है, इदारा है, खानदान, वहां से नस्लें चलती हैं। किसी भी कंपनी या फैक्ट्री का प्रोडक्ट बताता है कि वो फैक्ट्री ठीक काम कर रही है कि नहीं, तो प्रोडक्ट तो आज परेशान है, कहीं छोटी उम्र में ड्रग एडिक्टेड है और कहीं वो हाइपर है और कहीं कुछ है, तो शायद इसका वजह क्या है कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही। पीछे वाली आयत को साथ जोड़ लें, शौहर बीवी का अपना ताल्लुक बैलेंस्ड होगा, खूबसूरत होगा, तो बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे। और सिंगल मदर्स कभी पूरे बच्चे नहीं पाल सकती, कभी माँ के पास बच्चा, कभी बाप के पास। आज ये भी एक वेस्ट का अजीब सा ही मजाक है, सेपरेशन होती है तो या बच्चा माँ के घर रह रहा है, बाप के घर रह रहा है, अब दोनों में डिफरेंसेस हैं, हफ्ते के 3 दिन माँ के पास है तो 4 दिन बाप है, तो वीकडेज इधर तो वीकेंड, देखा जाए तो अकल से तो ये बात ठीक है, कि भी बच्चे को दोनों दो, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, आपने अगर ऑब्जर्व किया नहीं, मैंने ऐसी चीजों को बहुत करीब से देखा है लोगों के फायदे के लिए, कि देखूं कि बच्चों की साइकी क्या होता, क्या आपको पता? 4 दिन मां नॉन मुस्लिम थी, बच्चा उसके घर गया, तो 2 दिन वीकेंड पे या 5 दिन उधर था, तो 2 दिन मुस्लिम बाप के घर आ गया। माँ ने उसको पूरी क्रिश्चियनिटी और अपना बेदीनी सिखा दी, बाप इस्लाम सिखा रहा है। माँ बाप की बुराइयां करती दिखती है, बाप माँ की, एंड पे बच्चा किधर जाता है? जिसका रुख ज्यादा होगा। मैंने देखा है कि बचपन में पाबंदियां अच्छी नहीं लगती, माँ तो कोई पाबंदी नहीं लगाती, बाप बहुत सख्ती करता है, दादी और भी उस पर सख्त है, अखीर वो बच्चे भी 16-17 साल के होके उन्हीं नॉन मुस्लिमों को पसंद करते हैं। ये कई कहानियां मैंने सुनी ऐसी, क्योंकि गुनाह में कशिश होती है, तो ये कोई सही तरीकाकार नहीं है। इस्लाम का मिजाज क्या है ये आप अलग से पढ़ के देखिए। अगर आपने लॉ पढ़ा तो आप आपका फर्ज बनता है कि इस्लामिक लॉज पढ़े कि डिवोर्स की सूरत में किस उम्र का बच्चा किसके साथ रहे, छोटा बच्चा माँ का है, बड़ा बच्चा बाप का है, ताकि बड़ी उम्र में बच्चों को बाप की जरूरत होती है, छोटे दूध पीते बच्चे को माँ की जरूरत होती है। लेकिन मेरे अपने लिए, आपके लिए, हमारे लिए ये रूल्स अगर नए हैं तो हमने गैरों को कहाँ देने? क्या जब मुसलमान नॉन मुस्लिम मुल्कों के लॉज में जाके मुस्लिम लॉज इस खूबसूरत तरीके से नहीं पेश कर सकते कि वी वॉन्ट टू गिव योर सजेशन? और ये मेरा ही मानना है कि आप ब्रिटिश लॉ में या अमेरिकन लॉ में या दुनिया के किसी लॉ में अगर एक इस्लाम का लॉ डलवा दें, तो इस्लाम का लॉज वक्त के साथ उनको अपना फायदा दिखाएगा, क्योंकि दिस लॉ इज फ्रॉम अल्लाह सुबहाना ताला। तो हम तो अपने मुल्कों में नहीं कर पाते, दूसरों में क्या करेंगे? दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हिकमत दे दे। आइए देखते हैं। वइज काल लुकमान लिबनिही वहुवा याइज़ुहु या बनैया ला तुशरिक बिल्ला। और हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि वो अल्लाह का शुक्र गुजार हो जाए। ये लुकमान कौन है? ना नबी थे, ना वली थे, ना पैगंबर थे, एक साहिब हिकमत इंसान थे। और हिकमत की यहां आपको तारीफ भी समझ आ रही है और इफादियत भी दिख रही है कि हिकमत इंसान के दर्जे को बुलंद करती है। अरबों में इनका बड़ा चर्चा था, लोगों के घरों में सहीफा लुकमान के नाम पर बुक्स थी, ऐसी जैसे हमारे कल्चर में इकबाल जरी के नाम पर या कुछ तरह पढ़े लिखे लोगों में अलामा इकबाल का कलाम बहुत पढ़ा जाता है, इसी तरह अरब लोग लुकमान को पढ़ते थे। अल्लाह के नबी जो दीन लेकर आए, उसमें कुछ चीजें जो लुकमान की बातों से मिलती थी। इस्लाम ने ये नहीं कहा सब फेंक दो, अब आप कुरान पढ़ने लगे घर से सब अपनी किताबें खत्म कर दें, आप नॉवल नहीं पढ़ सकते, डायजेस्ट नहीं पढ़ सकते, इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम सिर्फ चीजों में से गलत चीजों को निकालता है। आप पढ़िए, आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप अखबार भी पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप साइंस मैगजीन पढ़ें, आप डायजेस्ट पढ़ें, आप हालाते हाजरा पढ़ें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस्लाम आपको सिर्फ एक छोटी सी चरखी की गिरनी को बनना चाहता, तो लिहाजा अल्लाह के नबी के जरिए आयतें नाजिल करके मक्का वालों को क्लोज किया गया कि नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हें लुकमान अच्छे लगते हैं तो अल्लाह को बुरे नहीं लगते, क्योंकि लुकमान का मैसेज अच्छा था। और हिकमत का तकाजा क्या था? अल्लाह का शुक्रगुजार बने। इसको हाईलाइट करें, यहां से ताल्लुक बिल्ला का भी और इंसानों के अच्छे ताल्लुकात का आगाज होता है कि बंदा शुक्रगुजार हो। शुक्र नहीं करेंगे तो ये बंदे नहीं बनेंगे, और बीवी शौहर की कदरदान नहीं होगी, शुक्रगुजार नहीं होगी तो अच्छी बीवी नहीं बनेगी, बच्चे माँ बाप के शुक्रगुजार नहीं होंगे तो उनकी बात नहीं मानेंगे। तो शुक्र को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है, और जितना शुक्र बढ़ता जाएगा ना उतनी हिकमत आएगी। जितने अल्लाह के शुक्रगुजार, उसकी छोटी छोटी नेमतों को आप डिस्कस कीजिए, उसका शुक्र कीजिए, उसको मेंशन कीजिए, अल्लाह आपके ऊपर हिकमतों के दरवाजे खोल देगा। हाँ, जो कोई शुक्र करेगा इसका शुक्र अपने लिए फायदेमंद है, किसको मिलेगा? आप शुक्रगुजार होंगी, आप खुद मोहब्बत लेंगी, आपको खुद नेमतें मिलेंगी। और जो कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। नाशुक्र लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अच्छे शौहरों की कदर नहीं करेंगे ना उनकी मोहब्बत की, सिर्फ छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर आने वाले वक्त में रोएंगे। अल्लाह की इस दुनिया में हर चीज आखिरत पे नहीं डाली जाती, दुनिया में डाल दी जाती। जो बीवी अच्छे शौहर की नाकदरी करके उससे फैसला लेके घर बैठेगी ना, आने वाले दौर में अल्लाह जरूर उसको ऐसा शौहर दिलाएगा जो उसकी नाकदरी करके उसको बिठाएगा घर। ये कि टिट फॉर टैट है, दुनिया मकाफाते अमल है। इसी तरह अगर आज हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, कल हमारे बच्चे हमारी नहीं करेंगे। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने अंदर शुक्र के जज्बे पैदा करें। याद करो, जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे तो उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, हक यह कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। नोट कर रहे हैं, पहला सबक जो बच्चे को सिखाया जाएगा वो तौहीद का सबक है, शिर्क से पाक। हम कहते हैं शिर्क तौहीद, ये तो बहुत आखिर में बातें करनी चाहिए, शुरू में तो करें ही ना, ये तो तब करते हैं जब लोग कब्रों पे बैठे हों। पहले डे वन से, पहले दिन यानी डे वन से बच्चे को अल्लाह की वहदानियत सिखाएं। बेटा अल्लाह ने दिया, ये दूध किसने दिया, बेटा अम्मी किसने दी, बेटा हु गिव्स यू हैंड, हु गिव्स यू आईज, हु दिस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने दूध के साथ बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत पिला दें, मत पीपल कॉन्शियस बनाएं। बेटा घर साफ कर लो, मेहमान आएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें, यानी अपने बच्चों को पीपल कॉन्शियस ना बनाएं। लोगों की नजरों में जब बच्चे बनते हैं ना, शिर्क करते हैं, फिर उनको अल्लाह का खौफ नहीं रहता। हक ये कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अल्लाह का हक हम बंदों को दे रहे होते हैं। और हकीकत यह कि हमने इंसान को अपने वालदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। नोट कीजिए कि लुकमान खुद अपने हकूक नहीं बच्चों को बता रहे, क्योंकि बंदा एम्बेरसमेंट फील करता है। अब आप अपने बच्चों को जाके माँ बाप के हकूक बता दें तो क्या होगा? अच्छा, बाज माँ बाप बड़ी नासमझी का इजहार करते हैं, बच्चों को और कुछ सिखाए ना सिखाए, जहां माँ की कोई बात है कट करके वो मैसेज दे देंगे, जहां बाप की कोई बात है माँ बाप से अच्छा रहना फौरन वो मैसेज देंगे। बच्चे अपना जहन बंद कर लेते हैं, कहते देखा अपने फायदे के लिए मैं दीन सिखा रहे। बाज अब जवान बच्चियों को साथ लेकर आती हैं माए दरसों में, और उनके सामने कह रही होती हैं जरा आज इनको माँ बाप के हकूक बताइएगा। भाई मैं क्यों बताऊं, मुझे क्या हक है, मैं तो इनको अल्लाह का हक बताऊंगी। जिसको अल्लाह का हक आ गया ना, वो माँ बाप का भी मान लेगा। कभी कहेंगे अच्छा इनको जरा अच्छे कपड़े सिखाएं, इनको जरा लिबास, और मेरा क्या हक है, मुझे वो जानती है, मेरी बात वो एक कान से सुनेंगे दूसरी से निकल जाएंगे, अगली दफा कहेंगे हम जाते ही नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है इनको बताने का। एक चीज अपने बच्चों को सिखा दें, किसी का बड़ा खूबसूरत जुमला था, तुम अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान तुम्हारे बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। और मैं कहूंगी कि अपने बच्चों को कुरान के कोर्सेज में डाल दें। अल्लाह की किताब एक माँ से भी प्यारे तरीके से तरबियत करती है, जो सूरतें जहां आनी है वहीं से है। आप कहते हैं इनको सूरत नूर पढ़ा दो, नहीं, जब अल्लाह ने सूरत नूर को 20-21वें नंबर पर रखा है तो मैं और आप क्यों पहले नंबर पर ले आए? पहले सूरह फातिहा पढ़ाएं, सूरह बकरा पढ़ाएं, सूरह आले इमरान, चलते जाए तरतीब के साथ आपके बच्चे ले आएंगे, फिर आप देखिएगा चेंज आएगा। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप देखिएगा कि बच्चों से लेके बड़ों को इसी तरीके से तालीम देनी है कि कुरान शुरू करें उनकी जिंदगी में, उनके लेवल पे ले। कुरान छोटे बच्चों के लिए स्टोरी बुक बन जाता है, जवानों के लिए वो उनके लिए एक बड़ी खूबसूरत डिस्कवरी होता है। तो लिहाजा अपने हकूक खुद बताने की बजाय दूसरों से कहलवा दें, आप खुद ना अपने बच्चों को कभी अपने हक दें। आगे से उन्होंने कह दिया तो क्या बड़ी बात है कि ना करते पैदा, हमने कहा था पैदा करें, आपके अपने शौक थे, आप क्यों पैदा किया हमने, तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो लिहाजा बहुत ज्यादा हक जतलाने वालों को हक बिल्कुल भी नहीं मिलता। फिर फरमा उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल इसका दूध छूटने में लगे। कैसे अल्लाह तला को माओ पे प्यार आता है, और अल्लाह ने ये आयत ना उतारी होती तो कभी को मर्द मानता ही ना कि प्रेगनेंसी में वीकनेसेस होती हैं, और बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ कितनी कमजोर होती है। अल्लाह अपनी बंदियों की इज्जत करवाना और उनकी कदर करवाना सिखा रहा है मर्दों से कि देखो कदर करो, इन्होंने तुम्हारे बच्चों को पाला, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालदैन का शुक्र भी जाला, और मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। हाँ लेकिन यहाँ देखिए, माँ बाप की खिदमत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, मोहब्बत करनी है, तवज्जो देनी है, लेकिन उनको होली नहीं बनाना, उनके कहने पे गलत काम नहीं करने। कैसे? लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डाल दें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे को शरीक कर जिसे तू नहीं जानता, तो फिर इनकी बात पर मेरे साथ किसी को शरीक करे ये नहीं करना, फिर इनकी बात हरगिज ना मान। हाँ लेकिन दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे। यानी माँ बाप अगर बेदीन भी हैं और तुम्हें अल्लाह ने दीन दे दिया, फिर भी अपने माँ बाप से बदतमीजी ना कर। क्योंकि देखिए, मेरे और आपके ऊपर अपने माँ बाप की तरबियत नहीं है, तरबियत बच्चों की जाती है। माँ बाप की तरबियत से ज्यादा उनके लिए दुआएं करें और उनकी कमजोरियों को अच्छे तरीके से दूर करवाएं, उनसे बात करें, उनको तालीम दें। लेकिन आप उनको टोक नहीं सकते क्योंकि वो बूढ़ी हड्डियां हो गई हैं, वो ऐसे अब बन चुके हैं कि वो तब्दील नहीं हो सकते। तो अल्लाह तआला कहते हैं कि बस उनके साथ अच्छे काम करते रहो, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की करना जिसने मेरी तरह रुजू किया। कभी एक तरफ माँ बाप कुछ कह रहे होते हैं, उस्ताद कोई और बात कहते हैं, तो कहा बात उस्ताद की मान लो, इज्जत प्यार मोहब्बत माँ बाप से रखो, फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुमको बताऊंगा तुम कैसे अमल करते रहे। या बुनैया इन्ना इन्तकुम मिसकाल हब्बत मिन खर्दल। और लुकमान ने कहा बेटा, कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान और जमीन में कहीं भी छुपी हुई हो, अल्लाह इसको निकाल लाएगा, वो बारीक बीन और बाखबर है। ये है अपने बच्चों को सिखाने वाली बात, तकवा। अल्लाह देख रहा है बेटा, रात की तन्हाइयों में क्या देखते हो, माँ बाप के सामने क्या और उनके पीछे का, और किताब के बहाने अंदर क्या पढ़ रहे हो, और कंप्यूटर को स्कूल के काम के लिए लिया लेकिन उसे कर क्या रहे हो, अल्लाह की नजर तुम्हारी हर चीज पर, इसलिए तुम अल्लाह से डरो। अपना डर ना दें, अल्लाह का डर दें। वो आएंगे, ये होगा, अम्मी आ ले, ये कर लूंगा। बाप माँ से डराते रहते हैं, माए बाप से डराती रहती हैं, नतीजा क्या होता है, बच्चे किसी से भी नहीं डरते। अल्लाह का डर दें, अल्लाह का डर बंदे को सीधा कर देता है। बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सबर कर। अब बच्चों पे क्या मुसीबतें पड़ती हैं, छोटा भाई शॉर्पनर लेके भाग गया, ये भी बड़ी मुसीबत है, और वो बड़े छोटे भाई ने आपकी कॉपी पे लकीरें लगा दी, तो बेटों को बच्चों को सबर सिखाए। अब उनको बड़ा बड़ा सबर तो अब नहीं सिखाएंगे, तो बच्चों को शुरू से टॉलरेंट बनाए कि कोई बात नहीं बेटा, टॉलरेंस पैदा करो, कोई बात नहीं, शुक्र करो भाई है तभी तो उसने तुम्हारी चीज ले ली। तो आप देखेंगे ये घरों में हर वक्त मुकदमे चलते रहते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर माँ लॉयर हो ना तो बहुत कामयाब लॉयर हो। एक दिन में 20-25 मुकदमे आते हैं माँ के पास। कई दफा ड्राइविंग में जब सिस्टर्स राइड देती हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, तो वो पीछे बच्चे बैठे होते हैं, बांधे ही होते हैं किस्म के, चार बच्चे हैं, तीन ने उनको रखा, मैं उनके साथ आ गया, तो कई दफा माँ को ड्राइविंग करते हुए पीछे मुड़ मुड़ के उनको समझाना पड़ता है, सबर करो, खामोशी करो, लड़ाई 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 लड़ाई, वो उसको कह रहा है, उसने मेरी कर दी, मेरी जगह पे बैठ गया, उधर कर दिया। तो मैं कहती अल्लाह के बंदो ये इतना क्यों लड़ते हैं, कहती घर में भी जाके इनका यही हाल है। तो लड़ते तो सारे ही हैं, लेकिन जब हर एक को अपना हक लेना है तो हर बच्चा वकील बन के अपना हक तो लेता है, तो ये मुकदमे भी जरा कम करवाने की जरूरत है। अपने बच्चों को टेम करें, उनके अंदर हम्बलनेस लाएं। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मस्जिदों में, सड़कों पे, दरवाजों पे घूम रहे हैं, ये हाइपरिज्म है, ये आज का तोहफा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कहते हैं बच्चे ऐसे बुद्धे होते थे, बैठा जिधर बिठा उधर ही बैठ जाते, और इधर बताना उसकी साइड पलट दो। अब तो पैदा होता तो बच्चा आके पटक पटक करके आंखें खोल रहा होता है। तो ये वक्त के तकाजे हैं ना, वो कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं, टेक्निकल दौर में पैदा हुए हैं, तो अब वो कुछ तो करेंगे। तो बहरहाल ये कि बच्चों को जरा सा कंट्रोल में रखें। आप कहेंगे कि ये बच्चों पे बात बहुत करती हैं, ये मेरा फेवरेट इशू है, इस वजह से कि आज के स्कूल हों या आज के घर हों, जब तक आपको बच्चों को डील करना नहीं आता, आप कामयाब पेरेंट्स नहीं हो सकते, कामयाब टीचर नहीं हो सकते। आज हम अपने बच्चों को बचपन से वो सब सिखा सकते हैं जो जवान होने पर वो नहीं सीखते हमसे, लेकिन हमारा हाल है ये बच्चे हैं, बच्चे हैं, इनको छोड़ दो। इंसान का बच्चा है, कोई और तो नहीं है कुछ, आप उसको क्यों इतना आउट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। इसी से फिर पर्सनैलिटी डेवलप होती है, फिर अपनी बात आती है। जैसे मैं देखती हूँ माएँ बच्चों की जरा सी कोई बात कहते हैं ना फौरन मान जाती हैं। मैंने कहा आपका ये बच्चा कभी नो नहीं सीखेगा, आप कल इसको कोई चीज़ नहीं दिलाएंगी ये रोएगा, वो लौटेगा, ज़मीन पर गिरेगा, घूमेगा। आज आप फ्रॉक पूछ रही हैं, बेटा ये लोगी तो कल वो आपकी पसंद के कपड़े पहनेंगी। आज आप छोटे बच्चे को दरवाजे पर खड़ा करके पूछे बेटा क्या खाओगे, तो कल वो आपकी मर्जी का नहीं खाएगा। आप एक बात याद रखें, बच्चों से मनवाएं उनकी मानने से ज्यादा। शुरू के 6-7 साल, बचपन से लेके 7 साल की उम्र तक अगर आप बच्चों को अपनी मनवा लें, यकीन कीजिए कि जवान होने तक वो बच्चे आपकी आंखों के ठंडक बन चुके होंगे, फिर आपकी वो मानेंगे। ऑपोजिट कहानी है, बचपन में हम लाड देखते रहते हैं, बड़े होकर उनको सलवाते सुनाते हैं। जिस उम्र में बच्चों से मोहब्बत करनी है ना, उस वक्त तक मोहब्बत की बजाय हम उनके लाड देख रहे होते हैं, और जिस उम्र में बच्चों से दोस्ती करनी है ना, 11, 12, 10, 12 साल, जो चेंजेस की उम्र है, लड़कियों में चेंजेस है, लड़कों में उस वक्त माँ को दोस्त बनना है, उस वक्त तक हमारा टेम्परामेंट लूज हो चुका होता है। जवान बेटी देख के तुम्हें वैसे ही बड़ा गुस्सा आता है, तुम ना मुझे दिखा करो, क्यों, इसलिए लोगों को पता चल जाता है तुम मेरी बेटी हो, तो मैं इतनी उम्र है मेरी। ऐसी मैं बन देखी, सबसे बाइखलाक, इतनी स्वीट, सब कहते हैं फुलां सिस्टर बहुत नाइस, जो ही अपनी जवान बेटी सामने आई तो बस चिचड़ी किकड़ी पिकड़ी, क्या कहती है, जब ये मेरे साथ नहीं थी लोग मुझे कहते हैं आप कितनी यंग लगती हैं, तो जब ये आके मम्मी कहती है तो मेरा वो ग्राफ जो है वो डाउन हो जाता है। तो भी आपको क्या चाहिए, अब रिश्ता चाहिए, क्या चाहिए आपको, आप बड़ी हैं तो बड़ी लगे, बेटों की माँ बच्चों की माँ है तो बच्चों की माँ लगे, लेकिन ये शौक है हर चीज में ज्यादा दिखे, उम्र में कम दिखे। कितना खुशी होती है जब कोई आपसे कहते हैं आप कितनी यंग लग रही हैं, कितनी छोटी लग रही है, और कोई आपको कह दे आपके हस्बैंड जी तो आपके ससुर लग रहे थे, उस दिन तो दिल करता है उसको जाके खूब इफ्तारी का ट्रे देकर आए कि इतनी बड़ी खबर उसने, और मियाँ को फिर सुनाएंगी आपको, पता वो क्या कह रही थी, मेरे ससुर लग रहे हैं, छोड़े दाढ़ी, इसीलिए वो गरीब बेचारे क्लीन शेव करके बैठ जाते हैं। अब सफेद वालों को रंगूं या दाढ़ी रखूं या ससुर लगूं, मैं क्या लगूं, अल्लाह के बंदों में कहां जाऊं, तो वो बेचारे फिर परेशान, फिर कहते हैं मियाँ दाढ़ी नहीं रखते, तो आप उनको हैंडसम कहें, उनको अच्छा कहें, उन्हें क्या आप बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। तो इंसान अपनी उम्र के साथ चले तो अच्छा लगता है। अब आप बड़ी और दो चुटियां करके पोलका डॉट के कपड़े पहन के आप अपनी बहू के साथ फिरेंगी तो लोग फिर आपको तो यही कहेंगे ना कि आप बड़ी फनी लग रही हैं। तो इज्जत करवानी सीखनी चाहिए, बड़ों को बुजुर्ग भी बनना चाहिए। कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं होते। ये आप सारे इतना हंसे क्यों हैं बाय द वे, اتنی خوشی تو آپ کو جنت کے ایسے سن کے نہیں ہوئی جتنی آپ کو یہاں ہو رہی ہے. استغفر اللہ, میں ہنسا رہی ہوں آپ کو. اللہ اکبر. چلیے پھر آپ سیریس ہو کے پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ زندگی کی مثالیں ہیں, یہ نہیں پڑھیں گے نہیں سیکھیں گے نا تو ہم اس قرآن سے بس پارا ہی پورا کر کے جایا کریں گے. اس لیے اب ایک اور بہت خوبصورت ادب بچوں کو سکھانے کا, وہ کیا ہے؟ فرمائیے, وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو. یہ ہے آج سیکھنے کی بات. بچوں سے کہیں کہ اپنے آپ کو ذرا نیچا رکھیں. یہ جو ہے نا تو سائر خد کل الناس, سار بیماری کو کہتے ہیں, جو اونٹ کو جب ہوتی ہے نا تو اس کی گردن ٹیڑھی رہتی ہے, سیدھی نہیں ہوتی. اللہ معاف کرے جب بچپن سے بچوں کو اتنا امپورٹنٹ بناتے ہیں اور ان کی اتنی مانتے ہیں, بڑے ہو کے وہ اپنے ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ایج کے لوگوں سے بات ہی نہیں کرتے. اکڑے ہوئے, ایک تنے ہوئے اور گردنے اکڑی ہوئی, غصے رعونت کہہ لیجئے, سب میں نہیں بھی ہوگی نا, لیکن اکثر آج میں نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے ٹرین نہیں کرتے ان کے بچے روڈ ہوتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے. اردو بولنے والوں کو تو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں, پاگل سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ کون ہے تھرڈ کلاس آنٹی, یہ آ گئی ہیں پاکستان سے, ہم ان سے نہیں کچھ سیکھ سکتے. کیوں؟ ان کو انگلش نہیں آتی. تب اردو بول کے دکھائیں, آپ کو آتی ہے اچھی اردو؟ جیسی اچھی اردو آپ بولتے ہیں اتنی اچھی انگلش ہمیں بھی آتی ہے. تو یاد رکھیے کبھی بچوں میں ایکسپیریئرٹی کمپلیکس نہ ڈالیں, نہ انفیریئرٹی نہ ایکسپیریئرٹی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں پھر ان کو خود پسند بناتی ہیں اور اس وجہ سے بھی کئی بچیاں شادی کے بعد گھروں میں بستی نہیں ہیں, کیونکہ ان کے منہ تو پھولے رہتے ہیں, اسمائل تو بہت کم آتا ہے ان کے منہ پر. پھر کہا نہ زمین میں اکڑ کر چلو, اللہ کسی خود پسند اور فخر جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. اب یہ کیا ہے, بچوں کو چال کا اعتدال نہیں ہم سکھائیں گے؟ زمین پہ چلو تو اتنی نرمی سے, ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یاد ہے کاد کہتے تھے زمین پہ زور سے قدم مارے نا تو زمین بد دعا دیتی ہے, نمک گر گیا تو پلکوں کے ساتھ نمک اٹھانا پڑے گا, یہ مجھے خود اچھی طرح یاد ہے. کبھی چمچ سے گرے تو پریشان ہو جاتے تھے, اتنے دانے ہماری پلکیں کیسے اٹھائیں گی. آج بچے آدھا کھائیں آدھا پھینکے, ماں کو پرواہی نہیں ہوتی, چلو پھینک دو, کنارے ہیں پھینک دو, چلو میں بھی نہیں کھاتی پھینک دو. یہ عادت ہے اس میں سکھائے گی کہ ریسورسز کو یوز کرنا سکھاؤ. آدھی پانی کی بوتل پی آدھا پھینک دیا, کوئی بات نہیں, اور ہے نا اتنی پڑی بھی, اور لوگ ڈونیٹ بھی تو اتنا کرتے ہیں, چلو پڑی ہیں پلا دو. آج جس مسلمان امت میں مسجدوں میں جا کر وہاں کے ریسورسز کو یوز کرنے کا شعور نہیں ہے, مجھے سچ بتائیں, چاہے وہ کھانا ہے پینا ہے, ٹیشو پیپر ہے یا ڈسپوزیبل گلاس یا پلیٹیں, کیا وہ کل بینگ اے نیشن کو یہ ایک اچھی امت بن سکتی ہے؟ اپنے گھروں میں نہ جانے کیسے رہتے ہیں لوگ. اس طرح سے ایک پانی پیا کٹک سے پھینک دیا, دوسرا پیا پھر پھینک دیا. ایک بندہ جو ایک افطاری کر کے جاتا ہے کم و بیش وہ 8-10 پلیٹیں گلاس چمچ ڈونگے یوز کر کے گیا ہوتا ہے, اور بعد میں اتنے بڑے بڑے ٹریش کے ڈبے. میرا خیال ہے کہ اگر ایک سجیشن کسی کو اچھی لگے تو لگے, اگلے سال جہاں بھی جس مسجد یا جو بھی دین کے نام پہ افطاری کراتا ہے, شروع میں لوگوں کو ایک بہترین پلیٹ گلاس اور چمچ تحفے میں دے افطاریوں کے شروع میں, اور انہیں کہ ایوری ڈے برنگ یور اون پلیٹ اور اپنا گلاس کھاؤ پی کے, اس کے بعد ساتھ چھوٹے ڈسپوزیبل لفافے دے دیں, کہنا ٹیک وتھ یو اینڈ واش اینڈ کل لے آؤ. عزت سے کہیں, یہ جو کاغذوں کی پلیٹیں یہ تو شرمندہ کر دیتی ہیں بندے کو, ڈیلی چمچے ہیں اس میں اب کھا کے وہ نوڈل ہی نہیں چلتی. اب دیکھیے پلاسٹک کی چمچ سے کھانا کوئی آسان ہے؟ بس اب دیکھیے بوٹی نہیں ٹوٹتی. یہ عزت نہیں ہے والله, یہ بالکل بےزتی کی بات ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو کاغذوں میں کھلائیں. آپ اپنی پلیٹ گھر سے لیں. چلیں یہ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اگلے سال اگر ہمیں موقع ملا تو یہی کریں گے, ہر ایک اپنی پلیٹ گلاس لے آئے, چلے میں اپنی چار لوگوں کی لیں گی اور یہ 6 پلیٹیں میں گھر لے جاؤں گی. کیوں نہیں ہم یہ آئیڈیاز دیتے دین والوں کو؟ اور میں جو سچی بات ہے, اس وقت وہ سسٹر جو والنٹیئر کرتی ہیں اور کھانے کھلاتی ہیں اور بعد میں سمیٹتی ہیں, میں کہتی ہوں ان کا کیا اجر ہوگا, کتنا صبر کتنا شکر. ایک دن آپ کے گھر میں 10-15 لوگ آ جائیں, 4 دن تک آپ کا گھر سیدھا نہیں ہوتا. آفرین ہے ان سسٹرز کو کہ جو مسجدوں میں افطاریوں میں کھلاتی پلاتی اور بعد میں سمیٹتی ہیں اور جو بچا ہوا پھر اس کو ہینڈل کرتی ہیں. یہ جہالت کی علامت ہے, ہمیں خود نہیں ہم. اور جس نے مسجد میں کھانا کھانے آنا ہے وہ پہلے اپوائنٹمنٹ دے کہ میں آؤں گا, کھانا آرڈر کریں ایک دن کم از کم 24 آورس یا آئی تھنک سو اس سے بھی چلیں پہلے, اور جو کیٹررز ہیں ان کو آپ پہلے سے ہولڈ پہ رکھیں کہ ہم آرڈر تو آپ کو 100 کا کریں لیکن ہم کل رات کو کنفرم کریں گے. مسجدوں کیوں ہم آرگنائز نہیں ہوتے؟ ایک بنا دیں پیپر سبسکرپشن کہ آج ہم آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ 5 لوگ آ رہے ہیں, اتنے لوگ ہیں ان کو لائیں, 24 گھنٹے سے پہلے بتا دیے اٹس فائن, نہیں ہے تو پھر آپ نہیں آ سکتے, کھانا نہ بچے نہ کم ہو. پھر باتیں کرتے ہیں آج کھانا کم ہو گیا, और आज बहुत बच गया। नहीं, हमारे घर तो कोई नहीं खाता, वो क्या करें इन प्लेटों को जो 50 प्लेटें बच गई। ये आप देखेंगे कमोबेश कई जगहों पे ये मसला है। और फिर कहते फेंक दो अब खाना किसी ने। जितना खाना हम मुसलमानों का रमजान में इफ्तारियों में जाया होता है, मैं कहती हूँ अल्लाह उस पर पूछ लेना तुम्हारी सारी इफ्तारियों का अदर जाया कर दे। इसलिए हमने कभी इफ्तारियां ऐसे नहीं कराई। दिल बहुत चाहता है। एक दफा हमने कराई थी अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म से एक जगह इफ्तारी, तो आज से कई साल पहले गए, $1,000 का बिल आया था। उस दिन मैं परेशान हुई थी, $1,000 हमने उनको खाना खिला दिया जो पहले घरों में खाते पीते और पता नहीं आधे रोजेदार थे आधे नहीं। और उस दौर में शायद डॉलर मुझे लगता है कि कोई 60-70 रुपीज का था पाकिस्तानी, कुछ इस तरह से था। तो मैंने हिसाब लगाया कि 60-70,000 रुपीज लग गए आज की इफ्तारी में। आज के बाद नहीं होगा, आप सबने डोनेट करना कीजिए, इसको किसी गरीब मुल्क में भेजें, किसी काम में लगाएं। 60,000 की किताबें मंगाई हो तो हो सकता है वो 60 स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, तो आपका सदका जारिया चलता ही जाएगा कि कहां तक वो किताब आपने पढ़ाई। हम दिल खोल के खानों में पैसा देते हैं, और रहम आता है मुझे उन लोगों पर जो इफ्तारियों में खाने के पैसे देते हैं। हर मस्जिदों में, मैं ज्यादा नहीं जानती लेकिन मेरा गुमान है कि आज भी 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 तक का खाना एक एक दिन में एक मस्जिद में आ रहा है। और किसी ऐसी मस्जिद में जाने का इत्तफाक हुआ जहां इफ्तारी नहीं है, तो सिर्फ 2 लोग थे और वो भी भूखे बैठे होंगे कि वहां मस्जिदें खाली हैं। और जिन मस्जिदों में खाने ऑफर होते हैं लोग भागते हैं, और खाने के बाद मस्जिद खाली, क्योंकि खाना खाने आए थे होटल समझ के चले गए। फोन करके लोग पूछते हैं आज अरबी का आ रहा है, पंजाबी आ रहा है, पाकिस्तानी आ रहा है, तो होटल के आप डिसाइड कीजिए, इज इट योर मस्जिद और इज होटल। जिस उम्मत को अपनी मस्जिदों में खाने के लालच में बुलाया, क्या वो मस्जिद मस्जिद रही? रूहानियत है? नहीं रहेगी। तो बहरहाल मैं इस पे कोई अपना रिव्यू नहीं दे रही, ना क्रिटिसिज्म है। जो दे रहे हैं अल्लाह उनका कबूल करे, जो खिला रहे हैं उनको अजर मिल रहा है, बहुत सारों का भला हो रहा है। लेकिन हमें अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है कि खाना जाया ना हो। तो यही बात जहां कह दी कि इत्तेदाल बैलेंस रहो, अपने आप को दरमियानी रखो, आवाजें भी दबाओ। और सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज है। आप अपने लिए इसमें नियत करें कि अपने बच्चे की उस बात का जवाब नहीं दूंगी जो मुझे दूर खड़ा होके पुकारेगा, अम्मी। इतनी ऊंची आवाज है और माँ भी वहीं से चीख के बोलती है, कभी जवाब ना दे। बच्चे को एक अदब सिखाए, उसमें हमने इस पे बात की थी, 10 फुट एक लिमिट है अपनी मम्मी को कॉल करने, मम्मी प्लीज कैन आई कम, मम्मी प्लीज लिसन टू मी। वहां खड़ा बच्चा अगर आपको, यहां बैठे मैं माँ हूं, मैं तो कभी ना बोलू, बोलते रहो चीखते रहो, मेरे कानों में तेरी आवाज ही नहीं जा रही। तरीके से और सलीके से और मेरे करीब और मेरे से बात करो, फिर मैं भी उसकी बात पूरी सुनूंगी। होता क्या, बच्चे उधर चीख रहे हैं, माएं वॉकमैन लगा के बातें भी कर रही हैं, हाँ हूं करती, ना वो उसकी सुनती है ना वो उसकी सुनते हैं। उनको चीखने की आदत पड़ गई, इनको सब्र करने की आदत पड़ गई। घरों में इतनी बेसकूनी होगी तो आप बताइए घरों के बुजुर्गों का क्या हाल होगा, और घर में कोई दीन का काम कैसे लेगा देगा। तो घरों को मुहज्जब बनाएंगे ना, इंशाल्लाह बाहर भी तहजीब आएगी। फिर अल्लाह तआला आगे हमें फिर गौर करवाते हैं कायनात पे, क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह ने जमीन और आसमान की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसख़्खर कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस पर हाल ये कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि इनके पास कोई इल्म हो या हिदायत या रोशनी दिखाने वाली किताब। और जब इनसे कहा जाए कि पैरवी करो इस चीज की जो अल्लाह ने नाजिल की, तो कहते हैं हम तो पैरवी करेंगे उस चीज की जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। वो स्टबन के स्टबन के अपने पुराने तरीके नहीं छोड़ने। क्या ये नहीं कि पैरवी करेंगे, खा शैतान इनको भड़कती हुई आग की तरफ ही क्यों ना बुलाता हो। हाईलाइट कीजिए, बड़ी खूबसूरत आयत है, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुवा मुहसिन फकद इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्का वइलल्लाहि आकिबतुल उमूर। जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन वो नेक हो, इसने फिल वाकई एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ में है। 3 सेकंड गौर कीजिए, बनना चाहती है मोहसिन? यहां स्टेप्स हैं असल में। पहले युस्लिम होता है, फर्स्ट स्टेप, यू सबमिट योर सेल्फ टू अल्लाह ताला। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मोहसिन, बल्कि मोहसिन आखिरी है। स्टेप्स हैं, एक दफा सबमिशन शुरू तो कीजिए, एक दिन आएगा कि अल्लाह आपको मोहसिन बनाएगा। और अपने कामों को, मोहसिन जो होता है ना वो अपने कामों को जाया नहीं करता। ये जो बात अभी पीछे हो रही थी तो मैंने एकदम इसके ऊपर ऐसे सोचा कि महीने के 30 दिन, ठीक है, 30 दिनों में 30 इफ्तारियां, 30 इफ्तारियों को राउंड फिगर कर लें 1,000, एक जगह 200-150 लोगों ने खाना खाया तो $30,000 एक मस्जिद को लगा। पूरे शहर की कितनी मस्जिदें हुई, चले हम लगा लेते हैं 10 मस्जिदें, 13 × 10, $3,00,000। अगर एक जगह जमा करें ना, तो आज भी एक छोटा सा दीन का काम शुरू हो सकता है और उसका सदका जारिया नस्लों में जाएगा। आज पैसा खाने पे लगाने की बजाय, जो जिस्म को पालता है, रूह के खाने पे लगाने की जरूरत है। आज भी हमारे कई प्रोजेक्ट रुक जाते हैं फंड्स ना होने की वजह से। आज लोग क्यों नहीं स्कूलों में भेजते बच्चों को दीन के, वजह के कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं। तो क्या हमारा पैसा बच्चों को दीन सिखाने पे नहीं लग सकता, खुद को लगाने पे नहीं आता? इस पे सोचने की जरूरत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे माल का सही मसरफ ले। आज हम लोगों की रूहों को जिंदा करें, ना कि उनके पेट को जिंदा करें। और इससे फिर टेस्ट कॉन्शियस भी हो गए। घर में रोज एक ही चीज नहीं पकती, आपको पता है, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, गोश्त, डिफरेंट चीजें पकी। जब आप रोज बाहर खाएंगे तो रोज पुलाव, बिरयानी, जर्दा ही खाएंगे, या जो भी टिपिकल चीजें होती हैं, उससे फिर हमारे अंदर ग्रीड भी बढ़ी। फिर हमें जरा किसी मस्जिद के पता चला दाल चावल है, नाक मुंह चढ़े, इस मस्जिद में नहीं आएंगे, या तो दाल चावल होते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के। तो अपने माल को सही जगह पे लगाएं, ताकि उसका अजर सिर्फ 6-7 घंटे तक आपके पेट में ना रहे, बल्कि वो आपके साथ रहे, जिसके साथ आपकी नस्लें संवरें। और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे जो सोसाइटी में चेंज आती है, वो इन चीजों से नहीं आती। खाने पे तो हर एक लगाता है, और मैंने ये देखा है, खाने पे हम सबसे ज्यादा खुशी से पैसा लगाते हैं, अपने या बच्चों के या मेहमानों के। सबसे मुश्किल पैसा जो हमारी उम्मत को इस वक्त लगाना लगता है, वो इल्म पे लगता है। दुनिया के इल्म का तो मैं नहीं जानती ज्यादा, मजबूरी में देते हैं लाखों हजारों दे के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दीन पे लगाते वक्त 10-10 सवाल जवाब जहनों में उभरते हैं। ये इस बात की अलामत है कि हमारे दिल में किस चीज की कितनी वैल्यू है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपनी फिक्र कर लो, आना तुमने कल मेरे पास है, और जब तुम अल्लाह के पास आओगे तो लग पता चलेगा। अब नबी सल्लम बहुत दुखी होते थे, यकीन कीजिए, जो आज हम बातें करके थोड़ा सा आज के लाल से दुखी हो जाते हैं ना, ये जो हम कभी हंसते भी है ना, वो भी असल में दुखी होता है कि हम कैसी उम्मत बन गए। नबी सल्लम भी लोगों के हालात पे कुढ़ते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप क्या करें, आप इन पर गम न करें। वमन का फरफला यहजुन का कुफ्रहु इलैना मरजिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अब जो कुफर करता है, इसका कुफर आपको गम में मुबतला न करे, इन्हें पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है, फिर हम इन्हें बता देंगे कि वो क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राजों तक को जानता है। हम थोड़ी मुद्दत इन्हें दुनिया में मजे करने का मौका दे रहे हैं, फिर इनको बेबस करके एक सख्त अजाब की तरफ खींच ले जाएंगे। अगर तुम इनसे पूछो जमीनों आसमान को किसने पैदा किया, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। 3 सेकंड तक गौर करें, क्या मुझे यकीन है कि सब कुछ अल्लाह का है? और सब कुछ जब अल्लाह का है, तो फिर हमारे दिल में अल्लाह की कितनी मरूबियत होनी चाहिए, और अल्लाह से प्यार कितना होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला बेनियाज और आप ही आप तारीफ किया हुआ है। जमीन में जितने दरख्त हैं, आप सब खास तौर पर अटलांटा वाले, कितने दरख्त हैं आपके शहर में, गिन सकते हैं? कभी बोर हुए आप, या कभी आप डिप्रेस हुए? मैं आपको एक इलाज देना चाहती हूँ। या कभी आपके बच्चे आजकल बोर होते हैं, छुट्टियां हैं तो हम बोर हो रहे हैं, कितने बच्चे बोर होते हैं हाथ खड़ा करें, जो कहते हैं अम्मी हम बोर हो रहे हैं, उनको अपने बैकयार्ड में लगे हुए दरख्त के पत्ते गिनने पे लगा दें। रियली आई एम सीरियस, कि बेटा जाओ तुम्हें 1 घंटे में इस दरख्त के पत्ते गिन के लाने हैं, पत्ते नहीं लेके आने, गिन के लाने हैं। बोरिंग सब खत्म हो गए, अब अल्लाह ताला की बात सुनिए। जमीन में जितने दरख्त हैं, वो सब के सब कलम बन जाएं और समंदर दवात बन जाएं, फिर साथ मजीद समंदर स्याही मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से खत्म ना होंगी। यानी सारे समंदरों को इंक बना लें, और सारे दरख्तों की कलमें तोड़ के उनसे पेंस बना लीजिए, और लिखिए अपने रब की बातें। फरमाया ये बातें खत्म ना होंगी, बेशक अल्लाह जबरदस्त और हकीम है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना, फिर दोबारा जिंदा करना, तो उसके लिए बस ऐसा है जैसे एक नफ्स को पैदा करना और जिंदा करना। हकीकत है कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और देखने वाला है। अलम तरन्नल्लाह युलिजु लैल बिन्नहार, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है, और दिन को रात में। इसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह इससे बाखबर है? ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और इसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं, वो सब बातिल है, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्ग बरतर है। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है, ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं, हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने और शुक्र करने वाला हो। आप नोट करें, इस सूरत में सब्र शुक्र का जिक्र है। ये दो तरीके सीखेंगे इंशाल्लाह हमारी नस्लें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड होंगी। और जब समंदर में इन लोगों पर एक मौज साहिबानों की तरह छा जाती है, तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल इसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचा कर इन्हें खुशकी तक पहुंचा देता है, तो इनमें से कोई दरमियानी राह बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो शख्स जो गद्दार और ना शुक्र है। यानी अल्लाह ताला यही सिखा रहे हैं कि हर हाल में मेरी कदर करो। फिर उसके बाद आखिरी बात है, इस पे एक लेक्चर था नफ्स के धोखे, बहुत पुरानी दावा सीरीज में था और मैंने देखा इसको हमारी वेबसाइट पे, अगर इसका लिंक भी आपको भेज दिया जाए, बिल्कुल थॉट प्रोवोकिंग है। असल में एक साल दौरा कुरान हमने इस तरह से किया था, हर पारे की एक आयत तदब्बर थी, मेंशन करती थी और उसको फिर उस शाम को इफ्तारी के वक्त पे ऑनलाइन पे लोगों से करती थी, तो बहुत स्पिरिचुअल सा वे है। तो ये लेक्चर उसी में से था कि जब हम अपने नफ्स के धोखों से निकलते हैं तो कैसे होता है, आइए देखिएगा। लोगों बच्चों अपने रब के गजब से और डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला ना देगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिर वाकई अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। और वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना धोखे बाज यानी शैतान तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। आज नफ्स के धोखों का शिकार लोग शैतान के धोखों में आ गए, अल्लाह हमें बचा के रखे। इसके बाद पांच चीजें जिनका इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं है, आइए देखिएगा। इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, इस खड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई नफ्स नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है, और न किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में इसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला बाखबर है। तो फिर उसकी बड़ाई को मान लो। आइए तिलावत सुनते आयत 12 से 19 तक सूरह लुकमान की, और आपकी आवाजें ऊंची होनी चाहिए किरत की आवाज से, ठीक है जी। आउज बिल्ला शुरू करते हैं, आयत नंबर 12 सब खोल लीजिए ताकि फिर एक साथ शुरू कर सके। 12
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر
سب کو سمجھنے کی توفیق دے. چونکہ سورۃ لقمان میں ٹاپک تھا بچوں کی تربیت کا, تو یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے. مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں اتنا ہی پتہ ہے کہ علم اکیڈمی جہاں ہم لوگ بیٹھ کے اس وقت بھی یہ دورہ قرآن کر رہے ہیں, پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول کرے اور اس سے جو خیر پھیلے اس کو ہم سب دیکھیں. تو ان کا ایک پروجیکٹ ہے کہ آپ لوگ ویب سائٹ پہ جا کر ایک لنک کے تھرو اگر کچھ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ کی مرضی ہے, کم ہے یا زیادہ, اینڈ آف دا ایئر جب آپ کا ٹیکس فائل ہوتا ہے تو اتنی پوری کی پوری منی آپ کو واپس آتی ہے. یہ میری نظر میں ایسی, اگر میں غلط کہوں تو مجھے گائڈ کیجیے گا, کہ میری نظر میں ایسے ہے کہ آپ ان کو لون دے رہے ہیں ایک سال کے لیے, جب اب سے لے کے شاید جنوری میں واپس مل جائے گا, یعنی آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں جائے گا. یہ ڈالر میچ کی کوئی ایسی پالیسی ہے, تو جو آپ ان کو دیں گے وہ آپ کو اینڈ آف دا ایئر اپنی ٹیکس کی ریٹرنز میں واپس مل جائے گا. دیٹس اٹ. یعنی آپ نے دیا کچھ نہیں لیکن دوسروں سے لے کے ذریعہ بن گئے, تو میرا خیال یہ تو بہت ہی آسان نیکی ہے. تو کچھ بھی منی ایسی ایکسٹرا ہو تو آپ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. باقی اس کی ڈیٹیل سسٹر فائزہ کے پاس ہیں, اور بعد میں آپ کو انشاءاللہ یہ کارڈز بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تاکہ اس چیز کو ہم آگے کر کے, جبکہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں لگ رہا, دوسرے کا فائدہ, اور اگر لگے بھی تو انشاءاللہ تعالی دین کے لیے اور علم کے لیے اور نسلوں کو پڑھانے کے لیے آگے لگانا, یہ تو ایک ہمارے لیے خیر کی بات ہوگی.